अर्जुनाचार्य के जीवन में घटना का वर्णन है। बाबा ने आज कहा, बाप सबकी परवरिश करते हैं और सबसे प्यार करते हैं। द्वापर से आत्माओं ने जो भगवान से प्यार किया, जब परमात्मा परिचय अज्ञात था, तब भी भगवान उनकी पालना करते थे, परवरिश करते थे और इसी तरह भक्ति का विस्तार हुआ साक्षात्कारों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, किंवदंतियों के द्वारा, दंत कथाओं के द्वारा। भक्ति की पार्श्वभूमि बनी और जिस भक्ति ने इतना विस्तार को पाया, अर्जुनाचार्य गीता पर टीका लिखते थे और उनका नियम था कि रोज तीन घर में जाकर भिक्षा मांगे, तीन घर से अधिक वो किसी चौथे घर में कभी नहीं गए और घर पे आकर अपना सारा समय भगवद गीता पर लिखते थे, एक एक श्लोक का विश्लेषण करते थे। एक बार लिखते लिखते इतने तन्मय तल्लीन हो गए कि देरी हो गई, दोपहरी हो गई, और जब गए तब सभी घर लगभग बंद थे, तो वो बिना भिक्षा लिए ही लौट आए और फिर से अपना लिखना चालू किया। गीता का 9वां अध्याय चालू था, 22वां श्लोक, जिसमें लिखा था, तेषां नित्य विभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन, जो इस तरह मेरे परायण है, जो इस तरह सर्व बातों के लिए मुझ पर निर्भर है, उनकी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति मैं करता हूं, और जो उनके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूं। उन्होंने ये श्लोक पढ़ा, मन में संदेह उठा, क्या वास्तव में भगवान पर्सनली व्यक्तिगत रूप से मेरी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा? तेषाम नित्य योगाभिप्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसका योगक्षेम मैं वहन करता हूं। उन्हें संदेह लगा, क्योंकि आज तो मैं भूखा ही रह गया और परिवार भी भूखा ही रह गया। उन्होंने एक कलम उठाई और उस श्लोक के इन दो लाइन पर, योगक्षेमं वहाम्य पर कट कर दिया। फिर वो स्नान करने नदी पर चले गए, पत्नी अकेली घर पे थी और दो युवक जो बहुत सुंदर थे उनके घर आए, और वो बहुत सारा सामान लेकर आए, दाल, चावल, घी, सब्जियां। पत्नी ने पूछा, ये सब क्या है? उन्होंने कहा, हम आपके जो पति हैं वो हमारे गुरु हैं, उनके हम शिष्य हैं। उसे आश्चर्य लगा, उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया ऐसे किसी सुकुमार दो शिष्यों का। उन्होंने कहा कि हम उन्हीं के शिष्य हैं और उन्हीं की आज्ञा से हम आए हैं। तो पत्नी ने सब स्वीकार किया, और जब वो जाने लगे तो उनकी पीठ पर दो निशान थे, जैसे किसी ने चाबुक से मारा हो। तो पत्नी ने पूछा, ये क्या है, ये निशान कैसे? उन्होंने कहा, हमारे जो गुरु है अर्थात आपके जो पतिदेव है, बड़े स्ट्रिक्ट, बड़े अनुशासन प्रिय है, हमसे थोड़ी भी गलती हो जाती है तो हमें वो बहुत मारते हैं और हमसे बहुत काम भी लेते हैं। तो उसे तो दया आती है, संत हृदय नवनीत समाना, वो लेप लगा कर देती है और वो दोनों चले जाते हैं। अर्जुनाचार्य वापस आते हैं और वो इतना सब कुछ देखते हैं तो आश्चर्य होता है, पर पत्नी बहुत नाराज है, बात तक नहीं करती उनसे, ऐसी कठोरता, वो भी ऐसे सुकुमार बालकों की तरफ। वो पूछता है, क्या बात है, क्यों नाराज हो? वो सारा वृत्तांत सुनाती है, उनकी आंखों में आंसू आते हैं। वो कहते हैं, ऐसे मेरे कोई शिष्य नहीं है, शायद शायद वो स्वयं कृष्ण और बलराम होंगे। और रही बात उनके शरीर पर जो घाव था उसकी, वो भाग के जाते हैं और भगवद गीता को खोलते हैं, और जहां उन्होंने दो कट किया था, लाइन लगाई थी, तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, वो दो लाइन जो कट की थी वो अदृश्य हो गई है। तब वो कहते हैं, गीता और भगवान दो अलग अलग नहीं, एक ही है। उन्हें पश्चाताप होता है कि मैंने भगवान के वचनों पर संदेह व्यक्त किया, जबकि उसने जो कहा है, जबकि उसने उसकी जो वाणी है वो जो गीता है, गीता और गीता दाता दो अलग नहीं, एक ही है। आज सुबह की साकार मुरली, ये गीता का युग है। आज सुबह की साकार मुरली, ये लीप युग है। आज सुबह की साकार मुरली, फर्स्ट लाइन। जो मुरली को मिस करते हैं वो पद को मिस करते हैं। आज सुबह की साकार मुरली, वो शास्त्र जलाए जा सकते हैं, पर ज्ञान कोई शास्त्र नहीं जो जला दिया जाए। ये स्वतः ही प्राय लोप होता है। उसका एक एक महावाक्य अमूल्य है, अमूलक। वो जो कहता है उन शब्दों में सामर्थ्य है। जो चेतना गिर चुकी थी सुबह की साकार मुरली, रव रव नरक रावण राज, उस नरक से चेतना को उठाता है। ऐसा ज्ञान और कहीं नहीं, जिसकी भक्तों ने गाया, पूजन किया है, गायन किया है, वो ज्ञान भगवान अब दे रहे हैं। और ये ज्ञान सबसे नया है। ऐसा नया ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया, जो आज की मुरली में संत बाबा ने व्यक्तियों के लिए कहा, बाहर वालों के लिए कहा। मानो या ना मानो, समझो या ना समझो, जानो या ना जानो, तुम्हारी मर्जी। मैं तो सुना रहा हूं, तुम मानो या ना मानो, तुम जानो या ना जानो, तुम समझो या ना समझो, तुम्हारी मर्जी। पर जो ज्ञान मैं दे रहा हूं वो पतित पावनी ज्ञान है। तो ये ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, नव जीवन भरने वाला ये ज्ञान है। इस ज्ञान में जो नवीनता है, ऐसी नवीनता किसी भी ज्ञान में नहीं है संसार की। आज बाबा ने कहा यह त्रिमूर्ति यूनिवर्सिटी है। पुरुष पुरुष को, स्त्री स्त्री को बुलाओ, आओ यहां दाखला लो इस यूनिवर्सिटी में। अनुभव करना और कनारा कराना, यह ज्ञान है स्लोगन। तो आज हम चर्चा करेंगे कल की जो व्यक्तवाणी थी उस पर। 84 वर्ष दर्दनाक वर्ष था, जहां एक तरफ 84 के हंगामे दंगे हुए, लाखों लाखों लोग मारे गए, राजनीतिक हलचल, पॉलिटिकल अनार्की, अराजकता जहां थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी, जहां दूसरी ओर भोपाल गैस कांड, जहां पर देखते देखते लोग मर गए, मातम, आंसू, दुख, दर्द, पीड़ा, व्यथा, वेदना, हिंसा, क्रूरता, बर्बरता, निर्दयता, ये वर्ष था 84। ये वर्ष समाप्त हुआ। वर्ष की समाप्ति में भगवान का आगमन, 31 दिसंबर 84। क्या कहा होगा उसने? मन आश्चर्य से भर जाए, विस्मय से भर जाए, मुरली सुनने से पहले क्या कहा होगा, क्या बोला होगा, मनुष्य के विचार हमने अखबारों में पढ़ लिए, नेताओं के विचार पढ़ लिए, भगवान के क्या मत है, क्या मत है इसके बारे में। पुराना वर्ष बीत रहा है, नया वर्ष आ रहा है, तो मुरली सारी किस पर है? नवीनता पर। इस मुरली में बाबा ने कौन कौन सी नवीनता लानी है इसकी चर्चा की, 16 प्रकार की नवीनता। इस मुरली में बाबा ने होमवर्क दिए 2, इस मुरली में बाबा ने वरदान दिए 4, इस मुरली में बाबा ने जो संसार के लोग हैं उनको कौन सी नवीनता दिखानी है उसके बारे में मार्गदर्शन किया। ये सब तो मुरली में था, और हम अपने जीवन में कौन सी नवीनता लाएंगे उसकी कुछ अलग से हम चर्चा करेंगे। 4 बातें हैं। सबसे पहले एक है नवीनता, दूसरा है रचनात्मकता, तीसरा है परिवर्तन, और चौथा है जो बीत गया सो बीत गया, बीती को बिंदी। ये 4 चीजें जुड़ी हुई है। एक न्यूनेस, नवीनता लानी है जीवन में, जीवन नवीन हो, जरा भी उसमें पुरानापन ना हो। वो कौन कौन सी पुरानी बातें हैं उसकी भी चर्चा मुरली में आई है। नवीन जीवन हो, नया जीवन हो, पुराने में रस नहीं, पुराना बोर करता है, विरस है पुराना। नवीनता। दूसरा है क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता, अर्थात रचनात्मकता अर्थात सृजनता, अर्थात रचनात्मकता अर्थात जो पुराना है उसमें से नया क्रिएट कर देना। और इस ज्ञान में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो है रचनात्मकता, क्योंकि यहां सभी सब कुछ जानते हैं, और गलतियां अक्सर उनसे होती है जो सब जानते हैं। जो रॉ मटेरियल है उसे नया तैयार कर देना, ताकि चिंतन को धारा मिले, तेज हो, नहीं तो वही वही रटते रहेंगे। बाप आए हैं, आत्मा समझ बाप को याद कर, पतित से पावन बनना है, अब घर चलना है, दिव्य गुण धारण करना है, विनाश सामने खड़ा है, तुम्हें सतयुग में चलना है, सेवा भी करना है, करनी है, काम महाशत्रु है, आदि मध्य अंत दुख देता है। सुना, बहुत सुना, और सुनते ही रहे। अब इसी से कुछ और निकालना है। आज सुबह की साकार मुरली, सेंसिबल बच्चे वो है जो बाप जो सिखाते हैं वो समझते हैं और फिर उसको रिपीट करते हैं। आज कहा ना, नया। एक छोटी सी बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंचती है, KG1 KG2 KG1 में एडमिशन के लिए इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक मैडम होती है प्रिंसिपल, वो बैठी हुई है और बच्ची एकदम चेयर पर सामने बैठती है और पेरेंट्स पीछे सोफा पर। तो वो प्रिंसिपल उस बच्ची से पूछते हैं, तुमको क्या आता है? इंटरव्यू चल रहा है क्योंकि एडमिशन लेनी है। बच्ची पूछती है, आप क्या सुनना चाहोगे? एकदम छोटी बच्ची है। पीछे से मम्मी बोलती है, बोलो बोलो मुझे कविता आती है। टीचर पूछते, प्रिंसिपल पूछता है, कविता सुनाओगी या कहानी? वो कहती है कहानी। तो सुनाओ। वो कहती, अपनी सुनाओ कि जो पढ़ी हुई है वो सुनाओ। तो वो प्रिंसिपल को आश्चर्य लगता है, ऐसी तेज बच्ची। वो कहता है चलो तुम अपनी सुनाओ जो तुमने बनाई है। तो वो बताना चालू करती है, एक था राम, उसकी पत्नी थी सीता, और रावण ने आकर उसे किडनैप कर दिया। एकदम फ्लॉप शो हो गया, ओपनिंग सीन ही डल था, इसमें कोई रस नहीं था, क्योंकि उसने कहा था मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी, पर ओपनिंग सीन फ्लॉप हो गया। तो प्रिंसिपल ने कहा आगे, उसने कहा कि फिर राम जी ने हनुमान को बुलाया सीता को लाने के लिए, फिर आगे, फिर बच्ची कहती है फिर हनुमान जी ने स्पाइडरमैन को बुलाया। और देख क्या कहानी में ट्विस्ट आ गया, स्पाइडरमैन। वो कहती हां स्पाइडरमैन क्यों? वो कहती है क्योंकि हनुमान जी के एक हाथ में तो पहाड़ है, तो तेज कैसे जाएगा? तो प्रिंसिपल कहते पर तो उड़ सकता है। उड़ तो सकता है पर हाथ में पहाड़ है, इसलिए स्पाइडरमैन अपनी रस्सी पर उसको ले जाएगा। तो अच्छा फिर आगे, आगे क्या था? वो दोनों पहुंचे और सीता जी को उठाकर लाने लगे, परंतु फिर हनुमान जी ने छोटे भीम को बुलाया। उसको क्यों बुलाया? क्योंकि अभी हनुमान जी के हाथ में एक हाथ में स्पाइडरमैन है, एक इधर सीता है, तो वो सब मिलके छोटे भीम पर बैठे और फिर जाने लगे भारत की ओर। सबको आश्चर्य होता है आगे क्या हुआ। वो कहते आगे क्या होना था, फिल्म बेंगलोर में उतरे। बेंगलोर में क्यों उतरे? क्योंकि वहां मेरा फ्रेंड अक्षय रहता है। वो क्यों, वो कहां से आ गया? वो कहती मेरी कहानी है, मैं जिसको बुलाऊं। और फिर आगे, आगे क्या होना था? फिर हम उतरे वहां मैजिस्टिक रोड, और फिर मैं अपने घर गई बैनरगट्टा। तो प्रिंसिपल कहता है ये बैनरगट्टा के लिए वहां क्यों गई? वो कहती है क्योंकि वहां मेरा घर है, तो मैं सीता हूं, तो मैं वहीं जाऊंगी ना। और तुरंत उसका एडमिशन हो जाता है। ऐसी रचनात्मक कहानी, इतनी क्रिएटिविटी, उसने अपना रामायण रचा। रचनात्मकता अर्थात जो दिखाई दे रहा है उसे नया क्रिएट करना। जब ऐसा होगा तब जीवन में उमंग उत्साह होगा, नहीं तो वही वही सुनते सुनते सुनते, बाप समान बनना है, बाप समान बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकार की, शब्दों को भी बदल दो। क्योंकि मन नवीनता चाहता है, तो दूसरा है रचनात्मकता, तीसरा है परिवर्तन। जो नवीनता लाए वो परिवर्तन की तरफ ले जाए, और चौथा है जो कुछ हो गया पूर्ण विराम। जो कुछ हो गया उसको क्या करना है? पूर्ण विराम, शब्द को भी बदल दो, फुल स्टॉप को। मन को नए शब्द चाहिए, मन नई भाषा जल्दी ग्रहण करता है। तो इस अव्यक्त वाणी में बाबा ने कुछ बातें कही है। नया वर्ष चालू हो रहा है, पुराना दर्दनाक था। पंजाब से कितने भाई बहन बाबा से मिलने आए थे। एक कोई फिरोजपुर सेंटर का एक भाई था, सिख था, उसको भी पकड़ा था सिखों के दंगे में। उसके पास जितने पैसे थे सब ले लिए, और फिर कुछ समय के बाद वो बाबा से मिलने यहां आया। अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात, बाबा से पूछा, बाबा ने कहा बच्चे सूली से कांटा बन गया, पर उन्होंने उसने कहा बाबा यदि वो लोग मुझे गोली मार देते तो बाबा से उस भाई ने पूछा अभी अभी शरीर छोड़ा है कुछ साल पहले उन्होंने बाबा यदि वो लोग मुझे गोली मार देते तो बाबा ने क्या कहा होगा बाप के होते बच्चे को कुछ नहीं हो सकता तो इस मूल्य में बहुत सारी नवीनताएं बाबा ने सुनाई कई बार नया नया शब्द आया है जहां जहां आया है वो सारे उठाकर आपको बताएंगे सबसे पहली है नई प्राप्ति नए वर्ष में क्या अनुभव करना है नई प्राप्ति पार्टियों से मुलाकात में फिर बाबा ने कहा भूल जाना यदि प्राप्तियों को भूलते हो तो भूल होती है दुर्भाग्य है और प्राप्तियों को याद रखना अर्थात दृढ़ संकल्प रखना अर्थात प्राप्ति स्वरूप सारे दिन में या सुबह सुबह उठते ही संकल्प करना कि आज नया दिन है नई प्राप्तियों का दिन है प्राप्ति है और प्राप्त करना है। महात्मा गांधी ने कहा है When I sleep, I die. When I wake up, I am reborn. सारे दिनचर्या में जब रात को मैं सोता हूं तो मर जाता हूं और सुबह जब उठता हूं तो नया जन्म लेता हूं। हर दिन नया जन्म लेना है हर दिन उठते ही ये संकल्प करना है कि आज अभी अभी मेरा नया जन्म हुआ है सब कुछ नया है सब कुछ फ्रेश है पुराना जो कुछ था टाटा। नई प्राप्ति पहला दूसरा नई रूहानी बातें नई रूहानी बातें ये मन में विचार करना कि आज हम बहुत सारी रूहानी बातें करेंगे आज हम बहुत सारी नई रूहानी बातें सोचेंगे आज हम नई बातें सुनेंगे मुरली से नई नई बातें सुनेंगे जो आज तक नहीं सुनी थी ऐसी बातें मुरली से सुनेंगे पहले से ही मन को तैयार करना है मुरली में जाने से पहले कि इस मुरली से कुछ ऐसी नई बातें मिलने वाली है जो आज तक नहीं मिली थी। संसार में जिस्मानी बातें हैं जिस्म की चर्चा है शारीरिक सौंदर्य की चर्चा है यहां रूहानी सौंदर्य की चर्चा है तो बाबा ने कहा रूहानी बातें नई रूहानी बातें तीसरा नई बधाई और ये बधाई उनको मिलेगी जिन्होंने विदाई की है किन किन बातों को विदाई की है पुरानी संस्कार पुरानी स्मृतियां पुराने देह की स्मृतियां पुरानी वृत्तियां पुराने संसार से लगाओ जो कुछ पुराना है जो कुछ पास्ट है जो कुछ हो गया है जो कुछ अब तक था सब कुछ फुल स्टॉप ऐसे जो बच्चे हैं जिन्होंने विदाई दी है ऐसे बच्चों को बाप दादा बधाई देते हैं और ये नई बधाई है ये नया आशीर्वाद है उसका और जिस पर उसका आशीर्वाद हो गया उसे किसी और के आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा सबकी हुई ये नया नई बधाई है न्यू कॉन्ग्रेचुलेशंस और ये रोज लेना है ताकि जो पुराना है ताकि आज जो गलती हो गई जो कल जो गलती हो गई थी उसका ही चिंतन ना करते बैठे जो हो गया वो हो गया फुल स्टॉप। नई बधाई नई प्राप्ति नई बातें नई बधाई चौथा नया संबंध सांसारिक संबंधों ने बहुत दुख दिया है हर एक ने अनुभव कर लिया संबंध नहीं है, बंधन है कलयुग के संबंध, चाहे कितना भी अच्छा और सुंदर क्यों ना हो, बंधन क्रिएट करता है। और ईश्वरीय संबंध सभी बंधनों से मुक्त करता है। क्या उससे सभी संबंध जुड़े हैं? यदि एक भी संबंध की कमी है तो द्वापर से उसी संबंध से दुख मिलेगा। अगर उसको अभी पति नहीं बनाया तो द्वापर से कभी ना कभी पति द्वारा दुख मिलेगा। यदि उससे बेटा नहीं बनाया तो द्वापर से बेटों के द्वारा दुख मिलेगा। सारे संबंध उससे जोड़ देना। अब इस समय नया संबंध और आपसी संबंध भी नए हो। आपसी संबंधों में भी कड़वाहट, निगेटिविटी, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, टकराव, मनमुटाव, लून पानी, अच्छा नहीं लगता है, कोई नफरत है किसी के प्रति, घृणा है, रिवेंज है, बदले की भावना है, उसने हमारे साथ इतना बुरा किया। बाबा यदि एक दिन दे दो बस फ्री हिसाब चुकतू करने के लिए, जिस दिन हमको सब माफ हो, ऐसी भी भावना है। नए संबंध, उसके बाद में नया दरबार। ये दरबार है रूहानी, ये दरबार है हाईएस्ट, ये दरबार है होलीएस्ट। हम किस दरबार में बैठे हैं? ये भगवान का दर, भगवान का दरबार। मुरलियों में दिल्ली दरबार की बातें आती है। हम उसके दरबार में बैठे हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, कम से कम उसके दरबार में जो है वो उसे सच बता दो, जो जीवन में है सब कुछ बता दो, जो भूले हुई ब्राह्मण बनने के बाद जो पाप विकर्म हुए, ब्राह्मण बनने के बाद काम के द्वारा जो विकर्म हुए, विकार के द्वारा, वो भी बता दो। माफी हो सकती है शायद, दाता का दरबार है, शायद कर दे, रहम दिल बहुत है। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण वो कृपा करने वाला है। तो ये नया दरबार है। कैसा दरबार है? रूहानी। कैसा दरबार है? हाईएस्ट। कैसा दरबार है? होलीएस्ट। दीवारों की एक एक ईंट पर पवित्रता की छाप है। ये वो दरबार है जहां संसार की महानतम आत्माओं ने अपना जीवन व्यतीत किया है, ब्रह्मा, मम्मा, दादिया। ये वो दरबार है जहां उनके प्रकंपन है, आकाशिक रिकॉर्ड्स। इंग्लिश में कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स, आकाश में सब कुछ है। महात्मा गांधी ने जो बोला था, हिटलर ने बोला था, और चाणक्य ने जो बोला था, और पृथ्वीराज चौहान ने जो बोला था, सब कुछ स्टोर्ड है, ऐसा कहा जाता है, आकाश में। उसको नया नाम दिया गया आकाशिक रिकॉर्ड्स। नथिंग डाइज, वर्ड्स आर इटर्नल, शब्द शाश्वत है। इस भूमि पर ब्रह्मा के मुख से निकले हुए शब्द प्रतिबिंबित, उसकी ध्वनि, उसकी गूंज मधुबन के चार धाम में है। केवल सुनना है आवाज। आज कहा ना परम धाम को नया नाम दिया, आज कौन सा? साकार मुरली, विज्ञान। तुम्हें ज्ञान से परे जाना है, ज्ञान में पढ़ाई है, आवाज है, तुम्हें विज्ञान में जाना है। उसके बाद नया युग, ये युग नया है और नया युग आने वाला है। हमने नए युग में प्रवेश किया है और कितने भाग्यशाली हैं, हमने उस युग में जन्म लिया जिस युग में भगवान धरा पर आया। ये नया युग है, हम उस युग में जन्म लिए हैं जहां पर इतनी सारी आत्माओं ने भगवान को जाना है और उनके बीच में हम हैं। उसके बाद नया उमंग उत्साह। बाबा ने कहा उमंग उत्साह ऐसे है जैसे कि आकाश में स्पेस में कोई रॉकेट जाता है, कोई यान जाता है और थोड़े समय के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति से मुक्त हो जाता है, तो उड़ती कला अर्थात उमंग उत्साह में जो रहता है सारे विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। विघ्नों के साथ कुछ करने की आवश्यकता नहीं, परिस्थितियों के साथ सर फोड़ने की आवश्यकता नहीं, पहाड़ को छन्नी और हथौड़े से तोड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम्हें उड़ जाना है। उमंग उत्साह पंख है, पर आत्माओं के पंख ही टूट गए हैं। एक पक्षी है जिसके पंख टूट गए हैं, कैसी गति होती है उसकी, तड़पता है। कहीं हमारे भी तो पंख नहीं टूटे। किसी समय पुरुषार्थ का उमंग उत्साह था, आज समाप्त हो गया है क्योंकि परिस्थितियां जीवन ऐसी ऐसी बातें सिखाई बताई सामने आई, ऐसे षड्यंत्र राजनीति कि वो जो बाल सुलभ उमंग उत्साह था कहीं ना कहीं तिरोहित हो गया। तो नया उमंग उत्साह फिर लाना है। ये उमंग उत्साह पंख है। अब मधुबन में आए हैं तो पुरुषार्थ की उमंग उत्साह के पंख धारण करके यहां से जाना है। नया उमंग उत्साह, उसके बाद में नया सुंदर ब्राह्मण परिवार। बाबा ने कहा तुमको ये प्रभु परिवार मिला है, ये सुंदर परिवार मिला है, साक्षी होकर इस परिवार को बार बार देखना है कि यहां की एक एक आत्मा को भगवान ने चुना है। बाबा ने किसी अव्यक्त वाणी में कहा है कि बच्चे तुम्हें वर्तमान किसी के भी स्वभाव संस्कार को देखना ही नहीं है, अगर देखना है तो उसके आदि और अनादि संस्कार को देखो बस, कि ये महान आत्मा है, ये शांत स्वरूप है, ये प्रेम स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है। वर्तमान जो कर रहा है वो देखना ही नहीं है, तुम उसको उतनी ऊंची नजर से देखो। कितनी बड़ी बात बोलती। उसके बाद नया ज्ञान। ये ज्ञान एकदम नया है, न्यू फैंगल्ड, सबसे नया, न भूतो न भविष्यति, ऐसा ज्ञान जो आज तक किसी ने न सुनाया। पवित्र मिदमुत्तमम, पवित्र को पवित्र करने वाला राज विद्या राज गुह्यम, ऐसा यह ज्ञान जो भगवान के मुखारविंद से निकला। इस ज्ञान को क्या करना चाहिए फिर, मुरली में क्या कहा, एक दिन भी मिस ना हो, इसको रिपीट करते रहो, सुनो पढ़ो लिखो और एक दूसरों के साथ रिपीट करो, बोलो बाबा ने ये कहा ऐसा कहा वैसा कहा। ज्ञान के संस्कार मुख में पढ़ने चाहिए। ज्ञान के संस्कार क्रिएट करने के लिए निरंतर मुख से ज्ञान की धारा बह, तो ज्ञान के नए संस्कार क्रिएट होंगे। जैसे अज्ञान के संस्कार क्रिएट हुए व्यर्थ बोल के संस्कार हुए है, वैसे अब ज्ञान के संस्कार, जब हम बोले तो किसी को बाबा की याद आए। कैसे बोले, जब हम बोले तो आत्माओं का ध्यान संसार से निकलकर आवाज से निकलकर बे आवाज में चला जाए। उसके बाद में नया जीवन जो बाबा ने दिया है, अपने ही जीवन की महिमा करो, अपनी ही महिमा करना है अपने ही जीवन की। खुद ही अपनी महिमा खुद कभी कभी कर लेना है, क्योंकि निंदा करने वाले तो संसार में खाली बहुत बैठे। हम पर पीएचडी करने वालों की भीड़ है, अपना ग्रेजुएशन छोड़कर हम पर पीएचडी करने में लगे हैं। दिन रात हमारी स्टडी करते हैं, कितना त्याग है, अपना ज्ञान योग त्याग कर हमें संपूर्ण बनाने के लिए, हमारी कमी एक एक बारीक से बारीक कमी को हमारे सामने रखते हैं। ऐसे मित्र को और कहां मिलेंगे। नया ज्ञान, नया जीवन, उसके बाद में नई नजर। बाबा ने कहा ये रूहानी नजर है, तुम्हारी नजर से, जो चुने हुए महावाक्य है आगे उसमें एक जगह है, तुम्हारी नजर से ज्योति स्वरूप बाप का साक्षात्कार हो, इन आंखों के तारों से वो सितारे नजर आए। इसके लिए अभ्यास करना है, बाबा से दृष्टि लेना और आत्माओं को दृष्टि देना, बाबा से दृष्टि लेना और संसार को दृष्टि देना, बाबा से दृष्टि लेना और इस जगत की परिक्रमा करना। जैसे तुम अब शांति स्तंभ की परिक्रमा करते हो, जब तुम शांति स्तंभ बन जाओगे तो बाप तुम्हारी परिक्रमा करेगा। कितने सुंदर वाक्य है। तो रूहानी नजर, उसके बाद में रूहानी नया वरदान। इस मुरली में चार वरदान बाबा ने दिया है, समान, समीप, दिल तख्त नशीन और रूहानी नशा। ये वरदान के रूप में इसे स्वीकार कर लेना। नए वर्ष की ये चार वरदान सौगात है। इससे बड़ा और क्या वरदान हो सकता है कि भगवान खुद ही कह रहा है कि तुम मेरे साथ रहोगे निरंतर। और क्या चाहिए कि हम उसके साथ रहे। अंग्रेजी में एक किताब है, दे लिव्ड विद गॉड, शिष्यों ने अपने गुरु के लिए लिख, किसी ने एक महान गुरु को के ऊपर वो किताब लिखी है, उनके शिष्यों पर, दे लिव्ड विद गॉड। वैसे हम पर अगर किताब लिखी जाए तो उसका शीर्षक होगा दे लिव्ड विद गॉड। तो सभी स्थिर, चार वरदान सूक्ष्म वतन में जाना है और बाबा से चार वरदान लेना है। भगवान ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया, समान भव, समीप भव, दिल तख्त नशीन भव, रूहानी नशे में रहने वाले भव। 15वां नया युग, नया युग और लास्ट नए युग के निर्माता हम। नया युग आ रहा है, ये संसार समाप्त हो रहा है। अपने मन को समझाना है, ये जो अंधेरी रात है, ये जो मोह की निशा है, खत्म होगी। प्रभात आ रहा है, तो ये नई 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 नई, इतने शब्दों के आगे मुरली में बाबा ने नया जोड़ा है। उमंग उत्साह में दो नई बातें और बताई, नया कर्म हो, नए संकल्प हो। तो चार वरदान दिए, 16 नई बातें बताई और दो होमवर्क दिए। होमवर्क उसी में समाये हुए है, स्वयं को प्राप्ति स्वरूप बनाना है और उमंग उत्साह से भर के रखना है नए वर्ष में। और नवीनता क्या दिखानी है। बाबा ने कहा मेले बहुत कर लिए, प्रदर्शनी बहुत कर ली, अब दुनिया वालों को कौन सी नवीनता दिखाओ, नए तुम्हारे जीवन की नवीनता दिखाओ, नया युग आया कि आए, नई सृष्टि की नवीनता दिखाओ, उनके अंदर उमंग हो कि ये दुनिया खत्म और नई दुनिया आ रही है, ऐसा कुछ प्रोग्राम बनाओ, ऐसी कुछ सेवा करो। 84 की बात है तब बाबा ये कह रहे हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण दो नवीनता का। हम नवीनता दूसरों को तभी सिखा सकते हैं जब हम में नवीनता हो। आज सुबह का हो योग हमारा सबसे नवीन था, तभी हम कह पाएंगे किसी को कि आज का योग, योग में नवीनता लाओ। तो ये मुरली की कुछ बातें थी। अब हम ये देखेंगे कि इस जीवन में नवीनता कहाँ कहाँ लानी है। सबसे पहले तो दिनचर्या में नवीनता लानी है, उसमें कुछ बातें हैं। सबसे पहला अमृत वेला, वो अमृत वेला वैसा ना हो जैसा कल था, आज नया हो। कल वाला जो आएगा वो एकदम नवीन हो, उसमें कुछ नए प्रयोग हो, कुछ नए संकल्प हो, उठते ही नई बात मन में आए। दूसरा नया मुरली चिंतन हो। रोज मुरली आ रही है, मुरली आ जा रही है, हमने उसमें से कितनी बातें पकड़ी। उस मुरली अगर है तो उसमें से बातों को एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है बाहर, अलग से रखना है और फिर उसके ऊपर चिंतन करना है। ये वो बात है, अब इस पर चिंतन करना है। तुम प्रकृति के अधीन नहीं हो सकते, साधनों के अधीन नहीं हो सकते, प्रभावित नहीं हो सकते, आकर्षित नहीं हो सकते। हम प्रकृति पति है, वरदान। पॉइंट निकालना है, उसको अलग से रखना है और फिर उसके ऊपर चिंतन लिखना है या करना है। मुरली में नवीनता, दूसरा। तीसरा भोजन में नवीनता, भोजन बनाने की विधि में, भोजन खाने की विधि में, भोग लगाने की विधि में नवीनता। जिस ढंग से हम खाते हैं, यदि भगवान ऊपर से देखे तो क्या वो ये सर्टिफिकेट देगा ये मेरी याद में खा रहे ये हम चतुराई कर रहे हैं। जैसे कोई नए नए परिवार था जो बीके बना था, ब्राह्मण, और फिर बेटी की कुछ शादी थी या कुछ था तो सबको वो होटल में लेके गए, पर उन्होंने कहा हम तो नहीं खाएंगे, पर सबको खाना पड़ा तो सबके लिए समोसा मंगाया गया। तो वो जो बीके बने थे नए पति और पत्नी युगल, उन्होंने समोसा लिया, अब क्या करें? तो उन्होंने एक आइडिया की, उसको तोड़ा और जो अंदर का आलू था ना वो खाने लगे। उन्होंने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा हम बाहर का नहीं खाते, हम अंदर का खाते हैं। भोजन में नवीनता, मन के चित्त की नवीनता। भोजन करते करते क्रोध में खाया जा रहा है, कंप्लेन के साथ खाया जा रहा है, दुख के साथ खाया जा रहा है, मनपसंद चीज बनी नहीं है, मूड ऑफ। देखा डाइनिंग में वो है, एकदम आज इच्छा ही नहीं है खाने की। भोजन को देखने के बाद इच्छा खत्म हो गई। वो भंडारा देखा है नीचे, उसमें बोर्ड लगा हुआ है 16 फरवरी 1988 अव्यक्त वाणी। ये भोजन ब्रह्मा भोजन है, ये दुख भंजक भोजन है, इसमें दवा भी है दुआ भी है, एक एक कणा मोहर के जैसा है। जाके पढ़ लेना कल। चाय लिया एक गिलास भर के, आधा पिया रख दिया। भोजन लिया ढेर सारा थाली भर के, थोड़ा सा खाया बाकी फेंक दिया। यहां आए तपस्या करने और सिर पर नए पाप का बोझ लेकर नहीं जाना है। एक एक कणा मोहर के जैसा है। पानी वेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट, पेट्रोल डीजल वेस्ट, पैसे वेस्ट, ये सारों की इकोनॉमी करनी है, ये समझना मेरा यज्ञ है। तो तीसरी नवीनता भोजन में, चौथी नवीनता ट्रैफिक कंट्रोल में। क्या नवीनता करे, 3 मिनट का गीत बजता है, क्या करे, फर्स्ट मिनट, सेकंड मिनट, थर्ड मिनट, 3 भाग में डिवाइड करो, पहला आत्मा, दूसरा परमात्मा से कनेक्शन, तीसरा सकाश, ये एक विधि है। ऐसी नई नई विधियां बनानी है कि 3 मिनट में क्या करे, मुरली की पॉइंट्स याद करे, आत्माभिमानी बन जाए या और कुछ करे। नवीनता लानी है उसमें। पांचवा कर्मयोग, कर्म के समय बाबा की याद कैसे रहे, ऐसा ना हो जाए कि पूरा ही वो भूल जाए और विकर्म हो जाए फिर। छठवा संबंध, आपसी संबंध कैसे है, यदि मेरा और किसी व्यक्ति का जो संबंध है वो ब्रह्मा कुमार हो सकता है, ब्रह्मा कुमारी हो सकती है, माई माँ बाप बहन भाई बच्चे मित्र संबंधी कोई भी, यदि उस संबंध को भगवान के सामने रखा तो क्या खुदा उस संबंध को, उस रिश्ते को तस्लीम करेगा, स्वीकार करेगा? रिश्ते वो उसके सामने स्वीकार होते हैं जिसमें प्यूरिटी है, जहां पवित्रता की दुर्गंध है अल्लाह उसे तस्लीम नहीं करेगा। संबंधों में नवीनता, उसके बाद में नुमा शाम के योग में नवीनता। जितना महत्व अमृत वेला है उतना ही महत्व नुमा शाम को देना है। उसकी तैयारी 6 बजे से चालू हो, यहां नहीं वहां जाने के बाद। कोई ट्रैवल में है, कोई ऑफिस में है, कोई किचन में है, कोई रिश्तेदार के साथ है, कहां पर भी हो, जैसे 6:30 बज गए अपने आप को कर्म करते हुए, जो बिजी है उनके लिए कह रहे हैं, जो बिजी नहीं है वो तो बैठ जाए, परंतु जो बिजी है, जो ट्रैवल में, ट्रेन में है, फ्लाइट में है, वहीं पर अशरीरी हो जाओ और बाप से कनेक्शन जोड़ दो। तो नवीनता किसमें लानी है, नुमा शाम के योग में। अगला नवीनता लानी है रात्रि सोने से पहले ज्ञान चिंतन में, ज्ञान डिस्कशन में। एक छोटा सा ग्रुप हो, 2 लोग काफी है ग्रुप के लिए, जो रोज की साकार मुरली सोने से पहले डिस्कस करे, सेंटर वाले सेंटर पर करे, घर वाले घर में करे, अगर घर वाले ज्ञान में चलते, अगर कोई भी नहीं चलता है तो किसी के साथ फोन पर, अगर वो भी संभव नहीं है तो अपने आप से आईने के सामने बैठकर, अगर वो भी संभव नहीं है तो बाबा के सामने बैठकर बाबा को ही सुनाओ, बाबा तुमने ये कहा था याद है कि भूल गए हमारे जैसा, उसी को उसका ज्ञान बताना, तुमने ऐसा कहा, अच्छी पॉइंट थी, गुड पॉइंट। नौवा चार्ट, चाहे लिखकर चाहे बताकर, मौखिक या लिखित, उसमें नवीनता। एक ही चार्ट जो मधुबन से मिल गया बस उसी को ही लिख रहे, ये भी बहुत अच्छी बात है न लिखने से तो, परंतु रोज की मुरली सुनते सुनते ही चार्ट बना देना है, उसको रात में भरना है, नया चार्ट हर दिन, हर दिन की मुरली से। लास्ट सोने की विधि, ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जागरण और सोना उसके बीच में एक डिजिटल नगरी खड़ी है पूरी की पूरी, और उसकी अनजानी गलियों में आत्मा भटकती है, और ये नगरी जागरण और सोने के बीच में बहुत ज्यादा प्रकट हो जाती है, दिन भर में लुप्त रहती है, यहां अपनी शक्तिशाली रूप में प्रकट हो जाती है, फोन कॉल्स, टेक्स्ट, वीडियो कॉल, मैसेजेस, यूट्यूब, फेसबुक, सब कुछ। और उससे सोने में लेट, उससे सोने की विधि गलत, उससे अंतिम संकल्प सोने का गलत, और वही प्रथम संकल्प होगा उठते ही। इन बातों में नवीनता लानी है। नवीनता कुछ और बातों में भी लानी है। विचार में नवीनता, आहार में नवीनता, विहार में नवीनता, व्यवहार में नवीनता, खुमार में नवीनता, इकरार वादा करना में नवीनता, इजहार में नवीनता, नकार में नवीनता, विकार से मुक्ति में नवीनता, बीमार बीमारी से मुक्ति में नवीनता, हर चीज में नवीनता, नवीन हो सब कुछ। लक्ष्य रखना है नवीनता का, लक्ष्य रखना है क्रिएटिविटी का। विदेशी लोग यहां आते हैं, वो लोग जब मुरली सुनने बैठते हैं तो ऐसे भारत वालों की तरह डायरी लेकर नहीं बैठते, ना ही पेन लेकर, एक चार्ट ले लेते, उस पर चित्र निकालते पूरी मुरली का, फ्लो चार्ट डायग्राम, एक पॉइंट बीच में, एक गोला, फिर उसको एरो देते हैं, यहां करेंगे वहां करेंगे, कुछ ना कुछ नवीन करते हैं। मुरली लिखने में, मुरली सुनने में नवीनता है। और हमारी अपनी वही विधि चालू है। मीठे बच्चे, प्रश्न, प्रश्न पूरा हुआ डायरी बंद, डायरी बाजू में, और फिर डोलना चालू, और डोलते तब मीठे मीठे सिकी लदे एकदम से जाग आता है, और फिर डायरी खोलना, धारणा के लिए मुख्य सार एक, धारणा के लिए मुख्य सार दो, वरदान स्लोगन डायरी बंद, अब कल मिलेंगे। सेंटर से बाहर जाते जाते चप्पल पहनते पहनते महावाक्य अदृश्य, घर पहुंचते पहुंचते प्रश्न उत्तर गायब, नाश्ता बनाते बनाते धारणा की मुख्य सार गया, नाश्ता खाते खाते वरदान रफू चक्कर, और ड्यूटी पर जाते जाते स्लोगन गया, और शाम होते होते आज की मुरली कैसी थी? बहुत अच्छी थी। क्या था वो मत पूछो बस, और जो था बहुत ही अच्छा था। बहन जी ने बहुत अच्छा सुना, पहले तो आते नहीं हो और फिर पूछते हो क्या था? नवीनता, नवीनता लानी हर चीज में, नवीनता। नया वर्ष केवल वो नहीं था, ऐसा समझना आज नया वर्ष, ये अंतिम दिन है पुराने वर्ष का, कल से नया वर्ष चालू हो रहा है, पुराना सब कुछ समाप्त और नए युग नए वर्ष का आगमन। अच्छा, हम शांति।